Good day and welcome to Trident Tech Labs Limited earnings call. We appreciate your participation as we review the company's operational and financial performance for H1 FY26 and outline our strategic direction. The purpose of today's call is to provide an overview of the company's progress and address questions from our investors and stakeholders. Please note that this call is being recorded and may contain certain statements based on current assumptions. These involve risks and uncertainties, and actual results may differ. The company assumes no obligation to update these statements except as required by law. We encourage participants to exercise caution before following the same. Representing Trident today, we have with us Mr. Sukesh Chandra Nathani, Whole-time Director, CFO and CEO, Mr. Praveen Kapoor, Managing Director, Mr. Tushar Borole, Whole-time Director, Mr. George De Silva, Whole-time Director, Mr. Sharad Nathani, Whole-time Director and Chairman, Mr. Sanjay Gandhi, CEO, Techlab Semiconductor Private Limited, Mr. Abhishek Yadav, COO, Power Solution Group, Ms. Gitanjali Kala, AVP Corporate Affairs, Mr. Kapil Dev Sharma, AVP F&A, Mr. Himanshu Gupta, Compliance Officer, and Mr. Vikesh Bansal, Finance Team. I will now hand over the call to the management for their opening remarks. Following their address, we will proceed to the Q&A session. Thank you, and over to you.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं सब आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ इस ट्राइडेंट टेक लैब की फर्स्ट हाफ ईयर 2026 के हाफ ईयर रिजल्ट्स के लिए। मैं तहे दिल से अपने सारे इन्वेस्टर्स का, जो पुराने समय से हमारे साथ जुड़े हैं और जो नए समय में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस सहयोग हमें मिला है, उसके वजह से ही हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉल में मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मिस्टर शरद नेथानी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मिस्टर प्रवीण कपूर मैनेजिंग डायरेक्टर, तुषार बरोले CTO फॉर पावर सॉल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर जॉर्ज डिसुल्वा CTO इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर संजय गांधी CEO टेकलैब सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर कपिल देव शर्मा एंड मिस गीतांजलि, एंड हमारे ऑडिटर मिस्टर विकेश बंसल जी भी अवेलेबल हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये साल हमारे लिए बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रहेगा, बिकॉज जो ट्रस्ट हमें आप लोगों से मिला है और मार्केट के काम की वजह से मिला है, वो सराहनीय है। हमारी टीम बहुत डेडिकेटेड होके इस स्टेज पे पहुंची है। एक ओवरव्यू मैं आपको कंपनी के बारे में देना चाहूंगा। हमारी कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई थी और एक नॉलेज बेस्ड कंपनी की तरह हम लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। हमारा ऑफिसेस दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकटा, चेन्नई और पुणे, ये पूरे जियोग्राफिकल स्प्रेड को इंश्योर करता है और ग्लोबल प्रेजेंस को फेल्ट कराता है, ताकि हम हर एरिया में काम कर रहे हैं और हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि क्लाइंटल हर जगह ऑल ओवर द इंडिया और बाहर के देशों में भी हैं, इसलिए हमारी प्रेजेंस हर जगह है। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो कस्टम बिट इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पावर इंजीनियरिंग हो, डिज़ाइन वेरिफिकेशन टूल हो, साइबर सिक्योरिटी हो, फुल्ली कस्टमाइज्ड चिप एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस हो, ये सारे एरिया में हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। मेन फोकस हमारा जो है वो बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी है। बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी ये है, आज की डेट में कोई भी बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई अवर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी। हमारी जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलिटी में बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी में है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में है, ये सारे एरिया में हम लोग काम करते हैं। और टेकलैब जो है कस्टम बिट सॉल्यूशंस, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में है, ऑटोमेटिव में है, साइबर सिक्योरिटी एक नया डिवीजन है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं सुकेश नथानी इस कंपनी का सीईओ एंड सीएफओ हूं। 35 साल से मैं इसी एरिया में काम कर रहा हूं, और काम की प्रशंसा केवल अवार्ड से ही नहीं की जा सकती, कंपनी की ग्रोथ से भी की जा सकती है। बट लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, एंड लास्ट ईयर 24 में ईटी का इम्पैक्टफुल सीईओ का अवार्ड हम लोगों को मिला है, और इस बार का चाणक्य अवार्ड हम लोगों ने जीता है। मिस्टर प्रवीण कपूर हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 35 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, और इनकी स्ट्रेटेजी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी कुछ सराहनीय रहती है। मिस्टर शरद जी हैं जो कि 36 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। तुषार बरोले हैं, 30 साल का इनको एक्सपीरियंस है पावर सोल्यूशन में। जॉर्ज हैं, 25 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है ईडीए प्रोडक्ट्स में, सेमीकंडक्टर्स में। डॉक्टर सती हैं जो कि एमिनेंट साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, ये हमारी टीम में हैं। मिस्टर जो भास्कर हैं, ये हमारी टीम में हैं। सीटी बद्रन हैं, 35 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है आईसीटी प्रोडक्ट्स में, कस्टमर सॉल्यूशन सेल्स में, ये हमारे साथ हैं। और मिस्टर अभिषेक यादव हैं, ये पावर सेक्टर में काफी 24 साल से काम कर रहे हैं, ये हमारे सीईओ हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास जो नया इंडक्ट हैं मिस्टर संदीप गंसाला हैं, 17 साल के एक्सपीरियंस इनके पास है। ये लोग ये साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने काम किया हुआ है, और काफी नॉलेजेबल हैं इस एरिया में। हमारे जो कंसल्टेंट हैं कमांडर रवि मल्होत्रा रिटायर, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के का नॉलेज रखते हैं, ये हमारे कंसल्टेंट हैं। संजय गांधी जो हैं हमारे सीईओ हैं ट्राइडेंट सेमीकंडक्टर के, जो कि 100% सब्सिडरी है ट्राइडेंट टेकलैब की। 28 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्हें इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट का, और इनका जो डोमेन है वो चाहे टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट हो, ईडीए हो, ऑटोमेटिव हो, या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, इस तरह का वास्ट एक्सपीरियंस के साथ। तो ये हमारा सारा मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टीम है जो कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। पहले पहले जो हमारा रेवेन्यू हाफ ईयरली रहा है वो 23.50 करोड़ रहा है, विच इज 6,350 करोड़, जो कि लैक्स है, जो कि 201 ईयर टू ईयर ग्रोथ है। यदि आप पिछले साल से ग्रोथ देखेंगे तो इस साल की इसकी 201% ग्रोथ है। इबीटा मार्जिन 17.20 करोड़ है, विच इज 167% ईयर टू ईयर है। प्रॉफिट इज 11.37% करोड़, विच इज 229% ईयर टू ईयर ग्रोथ। एंड आज की डेट में वी हैव द ऑर्डर इन हैंड अप्रॉक्सिमेटली 54.14 करोड़। सो दिस इज द आउटकम ऑफ आवर डेडिकेटेड वर्किंग, वेरी कंसंट्रेटेड फोकस वे आवर टीम इज वर्किंग टूवर्ड्स ऑल दीज एरियाज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। Now I would like to brief you something about the three sector, three services which we have. I will request Mr. Praveen Kapoor to talk about the power system solutions.
Good afternoon to you all. Talking of our business operations, which are concentrated on power systems related offerings, we are specialized in engineering consultancy works. Essentially, this is a set of services which are aimed at electrical power utilities, which are desirous of increasing the performance level of their power networks. And of course, do it both at the planning stage as well as operational stage. So we have got a comprehensive set of softwares and allied services, which helps our client in doing some kind of a predictive analysis on what exactly would be the performance of their systems under given conditions. So these kind of facilities, these kind of services, they are gaining popularity with time because our power distribution systems, our power distribution infrastructure is under immense stress. And as a consequence of that, their financial performance has also been on the downside when compared to international standards. With the onset of this growing consciousness that they have to bring about a better financial improvement in their performance, they are increasingly asking us for our services. Cutting across to the kind of services that we are offering on the global basis, we are into different domains: power transmission, power distribution, distributed energy resources integration, which is largely related to non-conventional energy resources like solar, thermal, tidal, etc. Then designing of electrical substations of different voltage levels and power cable ampacity calculations. This is so because with growing urbanization and governments adopting underground cabling system on a wider scale, those people, they are absolutely not in a position to take any chance with the reliability of the underground cable system that they are designing. So they are falling back more and more on our software and services to attain that objective. So as you would notice on this particular sheet, we are serving clients in different domains, including electrical power utilities, consultants, contractors, and also helping them in terms of their operational safety. And that is where we are talking of, you know, large manufacturing plants where they have got some really substantial electrical installations which require to be secured against any kind of an electrical fault in order to prevent damage to the equipment and to the human life. So we people are providing our specialized services for that purpose. Looking ahead, we are basically trying to gain a wider presence in the market. And in order to do that, we are now basically working on broadening the portfolio of our services, which come along with our products. So this is essentially where we think the real growth of our company lies in the coming months and years. Because even as technology is advancing, its adoption by the power utilities and electrical asset owners is becoming increasingly challenging. Technology is moving fast, new paradigms are coming by the day, and those people need specialized people for the purpose who can ensure that whatever implementations are being done with such huge and substantial financial investments, they get to see the light of the day and achieve financial viability. So in this regard, we have been pushing the envelope in different domains. First of all, we are broadening our portfolio of electrical power network planning software. We have also developed some specialized solutions which allow these kind of software solutions to get operated on multiple platforms, including on handheld mobile devices, so as to ensure that our clients can get to utilize whatever resources we are providing them on a 24/7 basis. We have got a very strong domain different domains, especially power distribution companies. On this day, we can claim that for the kind of technology solutions we are offering, we have almost got more than 95% of market in our hand. And likewise, we are trying to consolidate our positions in other areas, especially EPC companies, heavy industries, and also in specific utilities like hospitals and airports. We have been increasing our team in order to ensure that we are able to deliver the clients the right kind of services in time. So since we have to work on multiple domains, we have to work on multiple clients at the same time. So on this day, we have enhanced our engineering team size to 165, or rather a little more than that. And looking at our future, we think we are going to get more and more of our revenues from state-owned utilities, engineering consultants, and construction firms. So this is all about for now on our Power Solution Group related activities. Now I would ask Mr. George to take over and dwell upon engineering solutions related activities.
Thank you, and good afternoon to all. Talking about the engineering group, so at this group, we deliver high reliability engineering solutions for mission-critical work across DRDOs. It could be the naval, it could be the aerospace, as well as the research institutes or the research domain establishments. Now, we operate as a knowledge hub as well as a technology hub, where we enable industries to adopt emerging technologies fast, which would be faster, be more efficient, as well as it would reduce the time to market. That has been our whole focus in this particular group. So we help clients shorten the design and development cycle. It could be in the core electronics or the mechanical systems, wherein we collaborate along with the teams across domains with our manpower, in-house manpower, as well as consultants all around, so that the customer is at the advantage of having his system or the complete product developed within a specified time, so that this time to market is much, much more reduced. Talking about our services, so we also give importance to skilled manpower. We have a host of skilled manpower within the company, where we handhold the customer in his projects as well as in his development, where we also give consultation as well as engineering services, so that he is able to get out his product on time. Right. So, talking about our portfolio spans a comprehensive set of engineering verticals, making us one of the few companies which is capable of supporting end-to-end product realization. So, that has been our main niche area that we work in, wherein we give solutions across verticals, be it electronics, be it engineering, be it on the semiconductor, be it on the analytics, or be it on the reliability. So whether it's a chip level design, it could be a complex PCB design or a power electronic system, it could be on the structure analysis, as well as system modeling, or it could be on the digital data-driven intelligence. So we bring all these capabilities under one roof, under one solution platform. Excellent. So talking about one of the reports that was given by, or the research done by Grandview Research, they had estimated that the India's emission market would reach around 7.9 billion by 2030, with that as a CGR of around 21%. Now, this is an exceptional growth that has been predicted. And this is basically because this growth is driven by the increasing adoption of simulation, modeling, and digital engineering tools across all the verticals or the market segments, be it on the defense, be it on the automotive, be it on the telecom, be it on the semiconductor. So there has been an increasing adoption of all these simulation platforms, which is helping this business so high. So as well, the rising complexity in electronics, you can say it's automatic, automotive, aerospace, as well as defense systems, has made this prediction come true. This, in addition to the government-led modernization, as well as the Make in India, make it more impetus that simulation is going to be the next step or the next demand in the industry. So what this gives as a mandate is that incident software, but it could be design automation, it could be simulation, will be the fastest growing technology segments in India over the next few decades. And with all of this, it gives Trident Tech Labs an upper edge, because with our broader technical capabilities, deep domain reach and knowledge, skilled manpower, as well as the established network of clients across the armed forces, across the DRDOs, across the naval base, across the public sector, helps us positioning our solutions and services to customers at the right time, at the right moment, which gives us an edge over the other competitors in the market. So wherein we are able to serve the customer with the end-to-end solution at one time. So this has been the operation highlights as well as the growth prospects that we assume, wherein we can help the clients across streams, across segments, to cater to their product development at a faster time with reduced investments and improved design cycles. Thank you. So I would request Sukesh Nithani to take over the next vertical on the cybersecurity.
Yeah, I will hand over to Praveen Ji, who's taking the cybersecurity.
So I would just like to take you through the kind of work that we are doing right now in the domain of cybersecurity, which is a pretty exciting field, given the fact that this is one where a lot of activity is taking place in the market, and we have got a very huge potential of customers in the market. So in domain of cybersecurity, we are basically focusing on strengthening our clients' defenses and streamlining their security walls against any kind of hacking and other kind of cyber attacks, and ensure that they are compliant with the industry standards. We are offering a centralized asset and consumer information management along with patch management. So this basically means is we are devising solutions which are basically tailor-made for the day-to-day business practices of our client. And those are addressing all aspects of functions which are taking place at their business, and also ensure that whatever are the potential points of vulnerability in their system, any kind of a loopholes which can be misused by unethical elements, we are taking care of that, and we are providing the requisite protection against that. The company is actively pursuing a long-term formal partnership with government and politicians, because this entire business is not one where you can deliver a solution, shake hands, and move off. You need to stand side by side with your client for a long period of time in order to ensure that for whatever protection mechanism has been devised, it is used on a sustained basis and is capable of delivering on whatever performance it has promised to our client as and when they are coming under any kind of a cyber threat from external elements. The service begins with assessing clients' personal operations. And we basically are here talking about the kind of network infrastructure they have, the computer network infrastructure they have right within their premises, as well as external to their business operations, so as to ensure that we are plugging in those loopholes as and when those are being located. So these are basically different set of functions that we are engaged with when we are working for a given client. And it starts out with vulnerability and threat assessment. We need to visit our clients, understand how exactly they carry out their IT-related work on a day-to-day basis, and find out where exactly those vulnerabilities lie in the system. We also look at the kind of technologies that they are using, because in the present times, there is very little kind of, computer hardware or systems which are working in isolation. So since computers are working in a very widely spread out network, we need to, first of all, see what all different kind of systems are integrated to the IT infrastructure of our client. We also help in setting up a security operations center. That is the first line of action that we take as a precautionary measure that we deploy our specialized software solutions for that. Then we also do application security management. So this is an ever-going exercise for the mere fact that, this is a kind of a cat and mouse kind of a situation with people who carry out cyber threats and cyber attacks. So since we have to stay ahead of them in the game, we really need to do application security management on a day-to-day basis. And we have to work in real time because should there be an attack, our clients should be aware of that on immediate basis. So for now, we are setting up our entire portfolio of solutions and services, which requires us to work hand in hand with major companies in this area, both within and outside the country. We have got into a technology relationship with Intercept Labs recently, which are bringing in multiple benefits for the Indian clients, largely for the fact that, first of all, this is a made in India solution, and that very much falls in line with the Government of India's policy to promote Make in India. Second is, being an Indian company, it's so easy for us to work along with them to devise tailor-made solutions for the Indian clients, because Indian clients have their own peculiar requirements, and those require some kind of a tweaking here and there all the time. So this company being an Indian one, we can work much efficiently with them. And lastly, since it's an Indian company, we can always be cost-effective for our client. So looking at the kind of solutions we are bringing, we are basically trying to reach out to our clients in the government, defense, PSUs, and enterprises. Enterprises being business houses, in order to provide them our strong domain expertise and proven partnership that we have in a scalable, resilient, and intelligent protection platforms. So, looking at the market, how it is expected to grow in the coming times, it's expected to show more than 17% CAGR in the coming years, and it is expected to hit about $22+ billion in India by year 2032. So there is a wide sector adoption because cyber threat is something which is now affecting not just one, but all kinds of businesses and other kinds of even government operations. So everybody is showing a growing concern about it and eagerness to adopt this technology. And we are devising strong partnerships, and we are basically trying to ensure that the technology that we bring, those are working good for applications in all domains. And we are having a long-term plans for it. We are investing heavily into it. We are ensuring that we are arriving into the market with all the required wherewithal to address the market in a wholesome manner. So this is all about our cybersecurity solutions. Now I would invite Mr. Sanjay Gandhi to address you all with regard to the semiconductor-related business operations.
Thanks, Praveen, and good afternoon to you all. So under the Tech Labs semiconductor umbrella, we are taking care of the end-to-end semiconductor design, right? So the entire ASIC or FPGA design that we do take care of. And of course, when we talk about chip design, there are two types of chips designs, right? Whether it's digital or analog. So we are into both the domains when it comes to the chip design. And of course, as you know, these days, semiconductor is everywhere, right? Whether it is in the industrial application, automotive, IoT, AI, so on and so forth. And every semiconductor device is expected to run on a very low power. And at the same time, it should give you the high performance, right? So these are the challenges that we, solve for our customers as a part of the design services that we offer. And we do take care of the entire SoC or the ASIC design, which are very application specific for the customers, basically to speed up their time to market and maximize their cost efficiency. So that's what we do take care under this particular division. Next slide. So just to brief you about what type of services that we do take care under this. So one is the FPGA SoC design. So when we talk about FPGA as a device, this is predominantly used by the space applications or defense applications. Of course, there are private applications. Private companies are also using for their own applications, but predominantly in those areas. ASIC is, of course, all the semiconductor multinational companies are designing those. So we do offer our services to those companies, including the government sector. Next one is DO-254. This is basically a standard or a compliance when it comes to the space projects. So we very closely work with those space-related companies or organizations in India to offer our process-related services. Talking about verification and validation, so yes, we do take care of the entire verification and validation on the front-end design side as well as on the back-end design side. Talking about AI, AI is a buzzword today, and of course, semiconductor is not an exception. So we do a lot of AI-related services for our semiconductor design customers. We also take care of reliability services, basically onto the semiconductor products for the mission-critical and safety applications. Last but not the least is the system and PCB design. Taking the legacy forward of Trident Tech Labs as a parent company, we are eyeing for some of the end-to-end product design projects, especially from the government sector, right? Likes of DRDO, space or Navy or armed forces, so on and so forth. So here we actually do the end-to-end product design, of course, in alliance with our partner, which I'll talk about in the next slide with Keyence Semicon. But this is the another area where we have actually got focus on. Next slide, please. So yeah, as you understand, we are laser focused on the semiconductor design space. We have started this Tech Labs Semiconductor as the subsidiary of Trident Tech Labs. So in addition to our organic growth, we have plans to look at the inorganic growth. And that's where we were last few months. We were looking at few potential companies that we can look at from the acquisition point of view. And out of many companies that we spoke of, right, we have shortlisted or narrowed down one company. And we are in a very active discussion with that company in terms of the acquisition, and we are in the process of due diligence right now. At the right point in time, when we have all the details and signed off, we will definitely get back to you, all the investors, to let you know what that company is. But that company brings a good size of team to us and few customers because they are already there working in the market for last 8, 9 years. And their management has more than 3 decades of experience in the semicon design services. So that's the real value for us on the table today, right? So we have experienced leadership. We have got Raghu Panikkar as the strategic advisor. He's the current CEO of Keyence Semicon, but he comes with 30 plus years of experience. Definitely, it's going to help us a lot to connect. Recently, we have had the strategic partnership or alliance with Keyence Semicon, and this is a twofold alliance. One is when we talk about end-to-end product design, when Keyence goes to the market and talk about end-to-end product design, they come along with us for the pre-silicon design. We are their partners. And when we go and talk about end-to-end product design, we lean on to Keyence Semicon to deliver the post-silicon side and the OSAT and the manufacturing side. So that's how it works. And even on the system design side, as I was talking about, Keyence has a strong team which comes from a very experienced company, and they are able to deliver very I would say niche projects. So that's how we are aligned together to work on those projects. And we have started going into the market as one team to showcase our capabilities. So as you understand that semiconductor is a buzzword everywhere, and globally, if you look at the growth rate that is expected is about 12 to 14% CAGR. And India is not an exception there. So we are looking at about 110 billion kind of a market by 2030 in next 5 years, right? And this will go across number of areas like so whether it is automotive, IoT, and then industrial automation, so on and so forth, right? I already talked about the partnership driven synergies because Keynes, we already signed up and we are looking at acquiring a company into the semicon design services. So that's how we are looking at those partnerships. So we are going to focus on the niche areas as well. So the company which comes to us post-acquisition, they do have certain capabilities in the entire ASIC design flow. But if we have to create the differentiators for us, to get foot in the door or get more business from the existing customer or new customers, we will have to create or we'll have to get into the niche areas, build our expertise into those areas. So that's on the plan for FY26. And so that will help us to go much deeper and wider in the existing accounts and the opening of new accounts. So that's how our growth strategy would be. And to satisfy that, we will have to have scalable, talent base because the existing talent is satisfying our existing customers. But if we want to acquire some new clients and get into niche areas, definitely we'll have to look into expertise from the industry who can come on board with us and deliver what we are aspiring for. Whatever we are doing under this umbrella, it's predominantly long-term revenue, right? Because when we work with any semiconductor company, we get inside with say one project, but then there is potential to once we are successfully delivering that project, we have potential to work on project B, C, D, and so on and so forth, right? And that is with one group. But in addition to that, there are multiple groups within that organization. So we will go and target those groups. That's how we'll try to have the entry in the account and then spread across. And that will help us to have the predictable revenue or recurring revenue. And that's what I mean by the long-term revenue potential that we see in this particular business. That's all from my side for now. I'll hand it over to Sukesh.
Thank you, Sanjay. Thank you, Praveen. Thank you, George. Now, if you see with this, we have a few clients which we projected in this slide, but we have more than this is our client. Because in all area, whether it's a power sector, engineering solutions, semiconductor, and cyber, our presence is all in government as well as the private organization. So this I have already told you कि हमारा graphical presence everywhere geographical presence है and that is only because that is the main mantra of our success कि every client is located separately. So we are trying to get the business from all over these clients located the different places. तो आई विल जस्ट टॉक कि क्या हमारा ऑर्डर बुक आज की डेट में है विच आई जस्ट मेंशन्ड हियर कि हमारे पास डिफेंस एंड गवर्नमेंट के 23.81 करोड़ के ऑर्डर हाथ में हैं, पावर सेक्टर के 28.87 के हैं, अदर्स 1.46 के हैं एंड 54.14 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड हैं विच इज इफ यू सी Already we have done 60 63.50 and 54.14 is on in hand. So this is the financial position of the company as on date. This is the profit loss account. If you see the last year vis-a-vis this year, you will see to year to year growth is very good, excellent. We are really excited for that. And you will see the same in the future also. Some of the financial heights which I've already spoken before, that year to year growth is 201%. EBITDA is 167%, PAT is 229%, debt days reduced to 155 days. So this is that way the company's financial strength is very good. These are a few pictures of awards and recognition by the for the company. तो फाइनली एक बात मैं जरूर सारे इन्वेस्टर्स को कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम यस जो हमने कहा था वो पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि हमारे ऑर्डर कोई मिस हुए, हमारी कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हुई। हमारी सारी अपॉर्चुनिटीज पाइपलाइन में आई या कुछ ऑर्डर आ गए। पहले उसमें डिफरेंसेस ये आया था कि पहले हम 10 या 12 या 15 करोड़ के ऑर्डर लेते थे, अब हम बड़े ऑर्डर्स पे काम करते हैं। तो बड़े ऑर्डर्स में क्या होता है, प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, बट हमारी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि कभी भी हमने मार्केट को बताई हो और वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई होगी। सारी अपॉर्चुनिटी थी इंटैक्ट हैं, हमारे कस्टमर इंटैक्ट हैं, हमारा काम करने का ढंग है, हम कस्टमर के साथ बहुत पहले से काम करते हैं। हम उनको उनके जो प्रॉब्लम एरिया है उसमें काम कर लेते हैं और वो काम हमारा चलता रहता है। दैट्स व्हाई दिस मैन पावर जो 165 ट्रेन पीपल वर्किंग इन दिस कंपनी, दे आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स विद देम एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंपनी। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी सब ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि हम इंजीनियरिंग बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी करते हैं, उसका पर्पज ही यही है कि हम क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसे टेक्नोलॉजी के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ इज 165 पीपल, वी सेड 300 क्लाइंट हमारे पोर्टफोलियो में हैं जो हमारे साथ हमारे क्लाइंट लिस्ट में हैं और जिनके साथ रिपीटेड ऑर्डर्स चलते रहते हैं, बात करते हैं उनसे या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और चीज चाहिए उन्हें काम करते हैं। हेमिकॉन जस्ट द न्यू डिवीजन है, उसका एक्विजिशन पे भी बहुत शॉर्टली आई विल कम बैक टू यू एंड इन्फॉर्म यू इन द मार्केट व्हाट व्हाट इज द कंपनी, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपनी। सो दिस इज द ऑल विच वी कैन टेल यू। सो एट द लास्ट वी टेल यू वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल अवर स्टेक होल्डर्स, प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने हम पे भरोसा जताया है। और ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी भरोसों की वजह से हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारी टीम अच्छा कर रही है। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much, sir, and the entire management team for the detailed presentation and company overview. We'll now begin the question and answer session. Participants who wish to ask a question are requested to raise their hand. To ensure we accommodate as many queries as possible, we request each participant to limit themselves to two questions at a time before rejoining the queue if needed. We'll take the first question from Mr. Amaya.
Hello, thank you so much for the opportunity. Am I audible?
Yeah, thank you.
Hello.
Yes.
Hello. Can you
Yeah,
hear
Mr.
me if
May, you
someone
are
can confirm?
audible.
Us.
Okay. I'm not able to hear any sound, but I got a confirmation that my audio is clearly audible to all of you.
Sir,
Thank you for
you
the
are audible.
opportunity and
Please
the
go ahead.
presentation. I have the first question to Sukeshji. And the question is, sir, in last con call, you had mentioned that within the next year, we will have enough diversification coming from different states in the power business so that the lumpy nature will eventually normalize. So I want to ask where we are with that progress and how is that shaping up? Is your target still intact? The reason to ask this question is given our expectation, our target, and the order flow, these things are currently not matching. So just would like to understand your perspective on that. And I'll come to the second question afterwards if you are able to hear me clearly. Thank you.
या जो आपका क्वेश्चन है कि पावर सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारा ऑर्डर बुक क्या है, सबसे पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का ऑर्डर बुक होता है, हम लोगों के जनरली जब ऑर्डर आते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसे बिलिंग बिल में कन्वर्ट करने में। हम लोगों का काम पहले से होता रहता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि हम एक स्टेट या दो स्टेट को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सके। इस साल हमें दो और स्टेट कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। दैट यू विल सी इनटू द नेक्स्ट आवर। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
Okay, thank you so much, sir. So I have another second question before I join in the queue. I just want to emphasize that, you know, what is impacting us more than the order delays is basically the trust deficit, which is coming primarily from the minority retail shareholders, right? The last 8 to 10 months have been extremely eventful for all of us. And anything that can possibly go wrong has gone wrong. And I want to ask you this. What is your roadmap to regain that trust, and what will you do, you know, to do that? If you can clearly lay down what is the plan company has about this. Thank you.
आपने यदि आप स्ट्रेटेजिकल रिजल्ट्स देख लें पिछले साल का और इस साल के रिजल्ट्स देख लें हाफ ईयरली और नेक्स्ट हाफ का, आप सेम को कंपैरिजन कर लीजिए तो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली यू विल फाइंड द सेम वे द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो। अनसर्टेनिटी का इश्यू ये होता है कि जो अभी तक मार्केट में है वो ऑर्डर बुक पे लोग चलते हैं। हमारा ऑर्डर बुक से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है हमारे बिजनेस का। हमें जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है हम उसे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमारा किसी भी क्लाइंट पे काम पहले से चलता रहता है। हमारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप होती रहती है, उसमें मैन पावर लगी होती है, मैन पावर काम करते रहते हैं, जिससे रिजल्ट्स जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उसे बिलिंग में कर देते हैं। तो हमारा ऑर्डर बुक वाला चक्कर नहीं है, ऑर्डर बुक वाला सॉल्यूशन हमारे मत ऑर्डर बुक की तरह हमारी कंपनी का काम नहीं होता है। हमारा यह है कि प्रोस्पेक्ट बेस पे कह सकते हैं कि कितने प्रोस्पेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, क्या उन प्रोस्पेक्ट के किस लेवल पे काम चल रहा है। सो दैट वे वी वर्क सर।
So just last point, I think you should elaborate and detail out on this aspect, maybe in this call or at a later point in time, because currently the primary thing that all the investors look at is the order book. And if you say that, you know, we don't really work on the order book basis, I think we need more elaborate understanding on why is it so. So this is just a suggestion. And one last suggestion to IR is, you know, may I, if I give a suggestion, is before you upload the transcript, please ensure that the transcript is proofread. And the last transcript that we had, it had too many mistakes in it. So it's my request that please proofread the transcript before you upload. And if it is possible, also do that, you know, transcribe it so that our fellow investors from South can understand what you are trying to speak in Hindi. So thank you. I'll join back in queue.
Sure, sir. Point noted.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll take the next question from Mr. Mayur Patwa.
Good evening, everyone. Sukesh sir, I wanted to understand the nature of revenue that you have currently. Out of the 63 crores, what amount is a recurring revenue?
Very good. If you see the 63, all realized revenue. It is
I'm sorry, sir.
you are asking that out of 63, how much the recurring revenue, right?
Yes, sir.
But everything is realized.
No, it's realized, but how much of it would recur again in the next half?
Like actually, you see that these kind of orders, whatever you are saying, these
Yeah.
kind of order is maybe the same product product and configuration we are not going to get, but some different kind of products we are going to get it. It is the technology to technology difference.
Okay, and so one broader question is, how do you see Trident Tech Labs for the next 5 years? Like, oh, now we know that there are four segments that you're focusing on. What would be the target customers and the top segment that we will see in the next 5 years? And you already mentioned that you have 300 clients. How do you plan to go deeper into them?
In terms of the value, it is difficult to say how much the 5 year we are going to
Yeah,
develop. That
that
is
is fine, sir, but I just wanted to understand, like, what would be the focus in each segment? How are you going to target the
because
customer?
right now you are saying that the cyber revenue is very less, but we will
Yeah.
see in the future the cyber revenue will grow up. So where the power revenue is also going, cyber revenue is also growing. This defense DRDO, this revenue is also growing. Semicon is also growing. So you can understand how the value will grow up. I think already in our presentation, we have told what is the market size. So even if we are going to take 1 to 10%, that is going to be substantial.
Okay, sir. Thank you.
You.
Thank you, sir. We'll take the next question from Mr. Mithun.
Hello, can you hear me?
Yes.
Good afternoon, sir. I wanted to understand when we have different verticals, can we have a breakup of each verticals, as in what's the revenue from cybersecurity, semiconductor, and energy engineering division? These kind of breakups are available.
That kind of breakup will, as such, is still not the statutory requirement, right? But if just like the semicon is a different company. So even if tomorrow we decide that one particular division is growing big, their entire economics and psychology is going to be different, then we can have the different kind of vertical for that. But so far it is mixed. That's why. Because few technology is overlapping each other. So that's why we are not segmenting the revenue right now.
Fair enough, sir. My second question is with regards to the power sector, sir. In general, there has been a huge influx by the governmental side for these orders in terms of transmission and all this other stuff. But do we see any slowdown from government, or do we see any slowdown from our end because of the regulatory hurdles? Where in the last con call, it was suggested that whenever we went for an order, there was multiple signatures which were required. Some of the orders require 8 or 9 steps of signature. So are these regulatory issues resolved, or are there, and in general, there's a slowdown from the governmental side for getting these kind of orders?
नहीं, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि जब हम लोग केवल 4-5 करोड़ के ऑर्डर पे काम करते हैं तो सिग्नेचर की पावर्स नीचे लेवल पे हो जाती हैं, बट जब हम किसी बड़े टेंडर पे काम करते हैं जिसका टेन्योर जिसका ट्यून 40-50 करोड़ से ऊपर होगा, तो उसमें सिग्नेचर अथॉरिटीज अलग अलग होती हैं। आपको अप्रूवल जो है 2-3 लेवल पे लेना पड़ता है, 5-6 लेवल पे लेना पड़ता है। So that is the part of their procedure, and that we have to do it, right? So जो कि हमें पिछले साल जब हम बात कर रहे थे उस समय नहीं मालूम था, but जो कि we have learned now, we are working on the same way.
ठीक है सर. और अभी हमारे पास ज्यादातर के सब छोटे ऑर्डर्स है आ रहे हैं कि बड़े ऑर्डर्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं करके जहाँ पे
हमारे
अभी.
पास दोनों किस्म के ऑर्डर आ रहे हैं। यदि आपने देखा होगा पीछे हमारे पास छोटे ऑर्डर भी थे, बट छोटे ऑर्डर भी 4 करोड़ से चार चार 1 करोड़ का आ गया, 2 करोड़ का आ गया, इससे कम नहीं आते। इससे कम है छोटे ऑर्डर, जिनको बहुत छोटे ऑर्डर है, जैसे 20 लाख का भी कोई ऑर्डर होगा, बट दैट इज ए वेरी स्मॉल ऑर्डर, बट 2-4 करोड़ से लेके बड़े ऑर्डर में। तो अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन दोनों ऑर्डर्स की है, बड़े ऑर्डर्स की भी है, छोटे ऑर्डर्स की भी है।
ठीक है सर. और सेमिकॉन में सर हम लोग जो डिजाइनिंग कर रहे हैं
Oh,
यहाँ पे
sir, 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 so sorry, but I'll have to ask you to
it's
get
okay,
back
I'll
in the
be
queue.
back in queue. Yeah.
Thank you so much. We'll take the next question from Mr. Navid Virani.
Hello, am I audible?
Yes.
Yes, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I have two questions. Sir, पहला सवाल मुझे इस बैलेंस शीट के रिलेटेड था। अगर मैं बैलेंस शीट को देखता हूँ और रिसीवेबल्स देखता हूँ तो करीब करीब 50 करोड़ जैसा नंबर रिसीवेबल्स में मुझे दिख रहा है। एंड इफ आई लुक एट दिट लास्ट 12 मंथ्स रेवेन्यू, इट्स अराउंड 120 करोड़। सो सर, क्या आप समझा सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिसीवेबल्स में हमारा पैसा स्टक क्यों होता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। हेलो।
ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बैलेंस शीट, राइट?
यस।
या बैलेंस शीट में जनरली क्या होता है, यदि आपके पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे आए जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बजट हुए हैं, तो उसे 31 मार्च को काटना पड़ता है। तो 31 मार्च को जब काटेंगे और बैलेंस शीट में वो दिखेगा आपको, लेकिन वो अप्रैल और मई में आपको नहीं दिखेगा, अप्रैल मई तक उसकी पेमेंट आ जाती है।
तो बेसिकली सर, मुझे मुझे अभी भी क्लियरली समझ में नहीं आया कि जब हम कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कह रहे हैं कि दो दो एक महीने के अंदर हमें उसकी पेमेंट मिल जाती है,
ठीक,
बट नंबर्स थोड़ा कुछ अदरवाइज सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था। एम आई मिसिंग समथिंग हियर? मतलब ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे नंबर्स मेरे दिमाग में।
आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर विकेश टू जस्ट क्लेरिफाई, वो चेक करके ना कंफर्म करते हैं.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क वाज कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अपॉर्चुनिटी साइज को एक्सप्लेन किया, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजिक एंगल भी एक्सप्लेन किया चारों सेगमेंट्स को लेकर के। नाउ व्हाट आई वांट यू टू गिव अस अ सेंस इज कि चारों सेगमेंट्स को अगर आप डिवाइड करके हमें ये बता सके कि ऑन ग्राउंड कस्टमर्स के साथ जब आप कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं तो वो किस तरीके की कॉन्वर्जेशंस हो रही है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग बिजनेस फ्रॉम दोज कस्टमर्स। कहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड कहाँ पे अभी भी और इम्प्रूवमेंट का रूम है। इफ़ यू कैन डिवाइड दिस आंसर इन 4 सेगमेंट्स एंड गिव अस एन एक्सप्लेनेशन कि ऑन ग्राउंड किस तरीके से चीज़ें चल रही है, दैट वुड बी माई लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
देखिए सर, इम्प्रूवमेंट इज ए प्रोग्रेस. यदि इम्प्रूवमेंट नहीं है तो लाइफ वहीं रुक जाती है. तो इम्प्रूवमेंट तो रोज है. हम पावर सेक्टर में पिछले 25 साल से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है. वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की हर जगह ज़रूरत है. तो पावर सेक्टर में अभी हम लोग कुछ ही स्टेट में काम कर रहे हैं क्योंकि बड़े टेंडर्स हैं. इम्प्रूवमेंट ये है कि हमें और ज़्यादा बड़े स्टेट्स में काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी. दैट इज वन थिंग विच इज एट द पावर सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. डीआरडीओ की जिस तरह की डीआरडीओ की फंक्शनिंग है, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी से टाई अप करना बहुत जरूरी है. जैसे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है जो डीआरडीओ को चाहिए होती है, वो हमें करना होगा. एज फार एज द साइबर सिक्योरिटी इज कंसर्न, हम लोग अभी साइबर सिक्योरिटी में अभी पिछले 1 साल से आए हैं, बट 1 साल से हमने स्ट्रेटेजिकल डिफेंस के बिजनेस को लिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और उसमें इम्प्रूवमेंट इसलिए है कि वो अभी नया डिवीजन है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलती है. वैसे ही सेमीकॉन में भी सब चीजें अभी नया ढंग से काम हो रहा है, तो हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट एज फार इम्प्रूवमेंट इज कंसर्न, आप चारों डिवीजन में देखेंगे, रोज बिजनेस में तो रोज इम्प्रूवमेंट होती है। किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता है कि पूर्ण रूप से आदमी किसी भी चीज में नहीं रहता, उसे रोज नया चीज चाहिए होती है और उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है।
थैंक यू सर. विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर दीपक पोद्दार.
ऑडिबल सर?
यस
हेलो,
सर, यू आर ऑडिबल.
या सर, जस्ट आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर रेवेन्यू मिक्स। आई मीन, गिवन द वेरियस वर्टिकल्स वी हैव, हाउ आर वी लुकिंग एट द रेवेन्यू मिक्स ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years? आई मीन, सो दैट गिव्स अस सम अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ ईच ऑफ दिस बिजनेस कैन स्केल अप गोइंग फॉरवर्ड।
नहीं, 3 से 5 साल का दीपक जी, मैं अभी पहले ही आपको अभी बताया है कि हमने एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया है कि ये मार्केट इतना बढ़ रहा है, ये मार्केट इतना बढ़ रहा है, ये मार्केट इतना बढ़ रहा है। और आप हमारे अभी प्रेजेंट के बिजनेस को देखिए, हम कहाँ पे हैं, तो कितना बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी कैपेबिलिटी में, फाइनेंशियल पावर्स में, ये सारी चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं। तो ये बता देना कि आज से हम 3 साल बाद कहाँ होंगे, 5 साल बाद कहाँ होंगे, वो उससे ड्राइव करता है कि मार्केट पोटेंशियल क्या है और अभी आप कहाँ हैं। तो यदि आप मार्केट पोटेंशियल को देखें और हमारे रिजल्ट्स को देखें, तो आई थिंक यू कैन ड्राइव दैट। यदि इस कंपनी, यह कंपनी अच्छा काम करेगी और फाइनेंशियल पावर इसके पास होगी, तो कहाँ पहुंच सकती है।
ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और सर, इस साल का कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि
वो
वो
तो
अपना?
मैंने आपको बताया ना, आप हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट देख लीजिए, पिछले साल का हाफ ईयरली रिजल्ट देख लीजिए, पिछले साल का फुल ईयर रिजल्ट देख लीजिए, उससे कंपैरिजन कर लीजिए, अपना अनुमान लगा लीजिए।
तो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि फर्स्ट हाफ में हम लोग का 200% ग्रोथ आया है YOY ऑन हाफ बेसिस। तो सेकेंड हाफ में भी हम लोग सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
मैंने आपको वही तो अभी कहा आपको।
ओके ओके, ग्रेट। और ये मार्जिन स्टेबल है जो अपने 26 26.5% करते हैं?
स्टेबल है।
ओके ओके, दैट विल बी फ्रॉम माय। थैंक यू,
थैंक यू।
ऑल द वेलकम।
थैंक यू सर. विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अंकित गाला.
नमस्कार
हेलो, एम आई ऑडिबल?
यस यस,
सर, केन्स टेक्नोलॉजी के रघुनाथ पेनेकर का क्या रोल है कंपनी में?
सर जैसे एडवाइजर होते हैं, एडवाइजर का काम होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए एडवाइस करना कि किस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, किस क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, किस तरह से हम ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करें। क्योंकि यदि केन्स टेक्नोलॉजी ओसेट में है, हम लोग डिजाइन में हैं, दोनों जो हैंड टू हैंड डाल जाने वाली सर्विसेज हैं, तो उनका जो काम है वो एडवाइजर की तरह है, एडवाइज करते हैं हम लोग।
और उनका क्या हाथ रहा था जब ये अपला और के ट्राइडेंट और केन्स का रिलेशनशिप में,
क्या क्या उनका क्या कैन यू
उनका क्या हाथ था? अभी टू वे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है केन्स के साथ, तो इसमें उनका क्या हाथ था, उनका क्या रोल था?
देखिए, वो तो मिस्टर जो उनके सीईओ हैं, मिस्टर रमेश
रमेश कन्नन।
कन्नन, उनको हम लोग काफी सालों से जानते हैं। ये
ओके okay.
प्रपोजल संजय गांधी ने उन्हें रखा, उन्हें लगा हाँ ये बहुत अच्छा है, रघु पनिवार की एडवाइस भी गई उसमें, तो ये तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है ना सर.
ठीक है, थैंक यू सर, दैट्स इट फॉर माय एंड।
थैंक यू.
थैंक यू सर. विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर वेंकट कर्णन. Well, in the meantime, we'll take the next question from Mr. Hemant. We'll take the question from Mr. Gaurav. Sir, please unmute yourself and ask the question.
Am I audible now?
Yes, you're audible.
ओके सो माय क्वेश्चन इज लाइक बीच में सर आप लोगों ने प्रेफरेंशियल इश्यू लेके आए थे, लेकिन इट वाज ब्रॉट डाउन बिकॉज द स्टॉक प्राइस ऑफ ट्राइडेंट वाज नॉट फेवरेबल. सो अभी आपका कोई आगे प्लान है प्रेफरेंशियल लाने का? और ये भी क्वेश्चन है कि सिंस यू आर आपको वो टाइम पे प्रेफरेंस इश्यू में फंड रेज नहीं किया था आपने, तो हाउ आर यू मैनेजिंग द फंड्स और मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी?
अभी हम लोग अपने जो अपने ओन फंड हैं और बैंक के फाइनेंस से हमारा काम चल रहा है, और जो अभी हम टेकओवर भी कर रहे हैं वो अपने ही फंड से कर रहे हैं, तो यदि आगे ज़रूरत होगी तो ज़रूर हम फंड लेंगे मार्केट से। बिजनेस ग्रोथ के लिए तो फंड चाहिए होगा।
ओके सर, थैंक यू.
थैंक यू सर। We'll take the next question from Mr. Ganesh Kumar.
Sir, am I audible?
Yes.
Okay. I wanted to ask about the fundraise question, slightly in a different scenario. So you might have had plans for the funds that you are planning to raise, right? So did any of your plans or strategy change, and how do you think it will affect your growth strategy?
Because of the fund?
Yeah, because of the lack of fund, basically, the fundraising did not happen.
No, we first of all, there is no lack of fund in the company.
Okay, sir.
We are the good sound financial company. We are very disciplined financial company. So as far as the growth is concerned, yes, for the takeover, if we need the money, then certainly we need the money. But for running the company, I think we can manage very well. We decide the terms with the client very, very tightly, and we execute the contract on timely manner. That's why the fund is not the issue for the growth.
Okay. Just one more question from my side, sir. So most of our customers are domestic. Okay. The power utility in Bangladesh and all that, and Dubai. So we all know that it's very, very difficult to run a business in India and, of course, get our money, revenue, and all that. So being in the cutting edge of technology, have you ever thought of, providing our services to international customers like Europe, US, and all that?
We are working right now. The proposal is going with the 7 countries, not only Dubai, but
Saudi,
Saudi,
Oman,
Oman, then
Nigeria,
Nigeria, Turkey,
Cameroon.
Cameroon, various countries. So it is not only in India. We are working with internationally. That is because of the Dubai office is working with those kind of countries. So I cannot take this point that it is difficult to get the money from the government, from government contract in India. If your contract is very crystal clear, you get the money in time. There is absolutely no problem. So we get the money from the Indian contract too. But yes, we are expanding our portfolios in international market too.
Okay, so if I can just squeeze in one more question. How do you see us growing internationally in the next 1 or 2 years? I mean, talking about 3 years or 5 years is very difficult. I just want to understand your view on that. Next 1 or 2 years, international growth.
Certainly, the international is the different set of people. We have given them the different target. We certainly want to grow bigger because our services, all the four services required by those countries, right? You know that Indian people are very good on IT. Indian people are very good on technology. Indian people are very good on cyber securities. So certainly, these countries need these kind of services. And since it is a market traded company, we can very well position on these countries too.
Maybe if I can add to it, so we will have an opportunity to get the international business in the semicon division for sure, because the existing company that we are looking at to acquire, they already have some US-based customers and they do have offshore development centers in India for those customers. So once we have them with us, we'll try to grow that further. So I'm sure there'll be potential for us to get that international business in semicon.
Thank you, sir. Thanks for the opportunity.
Thank you,
Thank you.
sir. We'll take the next question from Mr. Swapnil.
Hello, am I audible?
Yes.
Sir, only one question. In terms of order visibility, how do you see Trident Tech Lab for coming 2 quarters? Won't be talking about a year or two, at least for coming 2 quarters, if you can give some visibility, inclusive all the segments.
Can you tell your question again, please?
So, sir, my question is, for coming 2 quarters, do you have any order visibility, right? Not talking about the existing, but the more orders that are in shape as of now may convert, at least some concrete number for coming 2 quarters. How do you see the order in pipeline?
That is that because I given the guidelines, right? Already now we have total as on date, we have 63 plus 54, which comes out to 124 crore, right? That is already there. And I given the guidelines that this is the, if you compare the last year, the balance sheet half yearly and the full year, the same way you can compare this year. So you can take your calculation that how the visibility is going to be. As far as the specific number is concerned, it will be difficult for me to reveal.
Okay, sir. Thank you.
Thank you.
Thank you, sir. We'll take the next question from Mr. Dalpat.
Hello.
Hello.
Yeah, am I audible?
Yes, sir.
Yeah, thank you, sir. My question was the for financial year 25, the revenue was 30% in first half and around 70% in the second half. So is this a normal trend for this business, or in future, what ratio we can expect between the first half and second half?
Yeah, because that is going to be remain for at least for 1 or 2 year. After some year, it is going to change. After at least 1 year or 2 year down the line, it will change because the new set of services is going to include in our business.
Okay, so second half is always better
Always
compared to
happy,
the first
always
half.
happy, always
Okay.
happy.
Yeah, thank you, sir. And second question is, how do you source or identify the clients? I mean, do clients come to you asking for your services, or the company approaches to the clients offering their services? So what actual modalities happens to you?
अरे मेहता जी, यही तो हमारा वो है, ट्रेड सीक्रेट है, ये कैसे बता देंगे आपको? यही तो ट्रेड सीक्रेट है कि कैसे एक्चुअली क्या है. देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो. वन इज
या
दैट यू हैव डन वेरी गुड फॉर वन क्लाइंट, ही इज गिविंग रेफरेंस टू अदर क्लाइंट दैट ही इज डन
ओके
वेरी गुड जॉब. राइट. सो दैट इज द वन वे, बिकॉज बेसिकली टेक्नोलॉजी में ओनली द नेम गोज टू वन माउथ टू अदर माउथ. इफ यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, देन सर्टेनली ही विल टेल टू द 10 क्लाइंट. But if you are not going fulfilling the requirement of the client, he will never tell, never, he will tell always bad to you, bad to other customer. So that is our strength. Our technical know-how and delivering the project is our strength and our teamwork. Our entire team is so disciplined and they deliver the things in time.
Okay, sir. Thank you.
Thank you.
Thank you, sir. We'll take the next question from Mr. Jaideep.
Hello.
Yes, sir, please go ahead.
Sir, as you have said, you are working in four different sectors. So I'm asking you that from which sector you are generating the highest revenue, and what is your capex plan for that particular sector?
Because last year the two sector was doing good, right? Third sector and fourth sector is only this year you will see the revenue. तो इसका जो कॉन्क्रीट आंसर होगा, हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट ईयर दे पाऊंगा, बिकॉज द ऑल द फोर सेक्टर इज गोइंग टू गिव द वेरी गुड डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस.
ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज द ट्राइडेंट सेमीकॉन स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू?
यस, बाय दिस ईयर एंड यू विल सी ए गुड गुड रेवेन्यू फ्रॉम दैट कंपनी.
ओके, fine, thank you.
Thank you, sir. We'll take the next question from Mr. Nikhil. We'll take the question from Mr. Rajesh Jain.
Hello, sir. Thanks for the opportunity. Sir, before I ask my two questions, I just have a suggestion that even though the earlier guidance was missed, but at least if you are transparent with the investors in terms of clarity and breakup, the investing community will really appreciate it. So with this background, I want to ask you some details on the numbers actually. So for example, when you take a multi-year order, is the AMC component on the license part, is it typically 18 to 20% per year? And is the AMC for the first year taken at the start of the first year or it is at the end of the first year? So I'll just give one example. You have recently taken a DRDO order of 72 crore, where in the action filing you mentioned 3 years duration, but execution within 90 days. So what is the meaning of this? How much revenue came in 90 days and what revenue will come in the balance 2.5 years?
In fact, I really appreciate the. You have really tweeted your question very well. So idea is that AMC is the part of the order, but it is start from the after 90 days. Some orders we negotiate after 1 year. So that is the cushions always the custom always we have, right? So exactly your question is regarding the revenue, the guidelines for this year, which I have already told you that
No,
this
sir, I'm
way
not
it
asking for
gets
guidance. Sir, sorry to interrupt. I'm not asking for any guidance on the revenue for this year. So I'm just again touching upon one aspect of the question, which probably शायद वो मिस हो गया है. मैं दोबारा उसको बोल देता हूँ. तो जब आप कोई ऑर्डर लेते हैं जिसमें लाइसेंस सेल्स इन्वॉल्व है, साइम लाइसेंस या और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ओके, उसमें एएमसी कंपोनेंट जो होता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आई हैव डील्ड विद एसएपी बिजनेस वन, और उन सब सॉफ्टवेयर्स में टिपिकली 18 to 20% मेंटेनेंस बिल्ट इन होता है फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड द सेम गोज ऑन फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो वही मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस सप्लाई करते हैं, चाहे वो डीआरडीओ को हो या पावर यूटिलिटीज को हो, उसमें क्या एएमसी का रेंज वही रेंज है, 18 to 20% है ये एवरी ईयर, इज इट करेक्ट?
नहीं, इट इज वेरी सम एएमसी इज इवन 10%.
ओके, सो बिटवीन 10 to 20% बेसिकली.
हाँ, 10 to 20%, और वो एक पहले साल भी आ सकती है, या फर्स्ट ईयर का एएमसी आपको फ्री देना पड़ता है प्रोडक्ट के साथ, नेक्स्ट ईयर से शुरू हो सकती है. इट इज वेरीज फ्रॉम द ऑर्डर टू ऑर्डर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
ओके, और ये जो एएमसी है ये सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस लाइसेंस वाला पार्ट है या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाला को आप मिल
कॉन्ट्रैक्ट
सकते?
भी है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी है.
और सॉफ्टवेयर का भी तो एक मेंटेनेंस का लाइसेंस कंपोनेंट पे एक मेंटेनेंस होता है ना?
सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस क्लब है ना आपके ऑर्डर में.
ओके ओके, ठीक है सर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ आई लास्ट द सेकेंड क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट कॉन कॉल में भी पूछा था जब आपने मेडन कॉन कॉल किया था अराउंड 1 ईयर अगो. ओके, एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दैट क्वेश्चन. सो इफ यू कैन गिव सम काइंड ऑफ ब्रेकअप, इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव एग्जैक्ट नंबर्स, ओके, नाउ आई एम नॉट आस्किंग ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल्स विच अ फ्यू अदर पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू. व्हाट आई एम आस्किंग इज योर हॉरिजॉन्टल ब्रेकअप, कि आपका जो रिवेन्यू है उसमें लाइसेंस सप्लाई से कितना परसेंटेज आता है अप्रॉक्सीमेटली, और आपके जो रेडी एड ऑन्स हैं सॉल्यूशंस हैं उनसे कितना परसेंटेज आता है, और जो ट्रेनिंग और कंसल्टेशन आप प्रोवाइड कराते हैं उससे कितना परसेंटेज आता है. सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल ब्रेकअप, नॉट ए वर्टिकल ब्रेकअप. कुछ भी आप डिटेल्स जो भी दे सकें, एनी एनी क्वालिटेटिव आंसर, एनी कलर ऑन दिस.
वो इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो हमारा प्रपोजल जाता है वो कंसोलिडेटेड जाता है. तो यदि जैन साहब मैं आपको दे रहा हूं तो फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं दूंगा? वो कंसोलिडेटेड जाता है, तो जो आपने कंसोलिडेटेड कहीं कोटेशन दे रखा है वो कोटेशन आप कभी भी ब्राइफरकेशन करके किसी और को नहीं दे सकते.
ओके, तो और जो आपके कस्टमर होते हैं वो भी आपको कभी लाइसेंस कंपोनेंट का, अगर किसी कस्टमर को एक एक्स्ट्रा लाइसेंस चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए तो आपको अलग से उसका प्राइस बताना ही पड़ेगा ना उस केस में.
नहीं, जो आपने प्राइस मांगा है, जो प्राइस है वो कंसोलिडेटेड प्राइस है, उसे उसी प्राइस में लेना पड़ेगा. तो
ओके
ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है.
ओके सर, जो आपका,
देखिए, आप सुनिए, आप जो है आप डॉस नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं बेच रहे हैं, आप एक हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स को पहले तो रिक्वायरमेंट जनरेट करना, फिर उसे सेटिस्फाइड करना, उसका डिजाइन उस पे हो जाना, ये एक पूरा प्रोसेस होता है,
राइट राइट
ठीक है ना?
सर,
तो
आपका,
उसको हम बाइफरकेट नहीं करते हैं कभी भी.
सर समझ गया समझ गया. आपका जो, आप जो साइम सॉफ्टवेयर के वेंडर हैं और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में, तो उसके लिए आपका कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है क्या साइम के साथ कि वो इंडिया में और कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे? आज तो आप एक्सक्लूसिव हैं लेकिन फ्यूचर में क्या वो अपॉइंट कर सकते हैं? और दूसरा, साइम का खुद का इंडिया में मार्केट शेयर क्या है? मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि साइम इज नॉट द लीडिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, इट्स प्रोबेबली एट फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, इज इट करेक्ट?
हु इज द फर्स्ट पोजिशन, कैन यू टेल मी मिस्टर जैन?
सर
मेरे
वो मैं, अभी मेरे
इन्फॉर्मेशन
पास
और
रेडी नहीं है, सो इट कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैंने कहा कि वो मैंने कहीं पढ़ा था. आई वांट टू आस्क डायरेक्टली
देखिए,
थ्रू द हॉर्सेस माउथ.
मिस्टर जैन, साइम सॉफ्टवेयर इज नॉट ए स्ट्रेंथ.
ओके.
साइम सॉफ्टवेयर से जो लाइब्रेरी बनी है वो स्ट्रेंथ है. दैट इज द एक्सक्लूसिव राइट विच वी हैव. एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर गिविंग द सर्विसेज फॉर साइम टू फिलीपींस, टू कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऑल अदर कंट्रीज. साइम हमारे से कोट करवाता है वहां पे, क्योंकि क्योंकि दे
ओके
डोंट हैव द लाइब्रेरीज विच वी हैव बिल्ड अप फ्रॉम लास्ट 25 ईयर. सो स्ट्रेंथ
ओके
इज नॉट साइन, स्ट्रेंथ इज द एंटायर एंटायर प्रोडक्ट
ओके
सप्लीमेंटेशन.
ओके अंडरस्टूड
सो दैट इज अवर स्ट्रेंथ. सो दैट इज दैट मेक्स अस ए वेरी यूनिक पोजिशन इन द मार्केट. और
ओके सर
आज एज फार एज मैं आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज इसमें बढ़ा दूं कि जो आप ई टैप को कह रहे होंगे कि नंबर वन सॉफ्टवेयर है इंडिया में, ई टैप डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर नहीं है, ई टैप ट्रांसमिशन का सॉफ्टवेयर है. साइम डिस्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में का सॉफ्टवेयर है. हम लोग ट्रांसमिशन में कम काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा काम करते हैं. हमारी
ओके
पोजिशन इंडिया में नंबर वन है.
ओके सर दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क
हाँ,
डायरेक्टली
नंबर
टू
वन
यू.
है. यदि आप कोई भी पैरामीटर्स कहीं भी हो तो आप प्लीज हमें जरूर शेयर करिएगा, सो दैट वी कैन गो टू दैट साइट एंड वी कैन टेल दैट हाउ द नंबर इज दे हैव कैलकुलेटेड. ई टैप ट्रांसमिशन में है, कंसल्टेंट्स के पास है सॉफ्टवेयर. साइमी हर समय डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे एक मोहल्ले में 1 लाख ट्रांसफॉर्मर होते हैं. इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना और उसका कैलकुलेशन कर पाना वो किसी और सॉफ्टवेयर के बस का नहीं है.
ओके सर आपका जो
सर,
बांग्लादेश
आई वुड रिक्वेस्ट.
ओके फाइन ओके ओके थैंक
थैंक यू
यू
सो मच. थैंक यू ऑल फॉर अ वेरी एंगेजिंग सेशन. ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स वी विल नाउ कंक्लूड. फॉर एनी पेंडिंग क्वेरीज प्लीज ईमेल अस एट द आईडीज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड वी विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली. आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट द मैनेजमेंट टू शेयर देयर क्लोजिंग रिमार्क्स.
Thank you very much. Today it was really great to interact with all of you, and it is really making us proud to address you all people, understand your queries, understand your views, and certainly I can assure you from the management of Tech Lab that we are on the right path. We are at the good journey. Certainly, you will see the good results from the company. Thank you very much.
Thank you so much, sir. On behalf of Trident Tech Labs Limited, I thank you all for joining today's call. You may now disconnect.